ओम शांति। आज हमारे बीच आदरणीय आत्म प्रकाश भाई जी का एक हाथों से वेलकम करेंगे सभी। भाई जी का मैं संक्षिप्त परिचय देना चाहूंगा। आत्म भाई जी, आप बाल्यकाल से ही एक मेधावी छात्र रहे हैं। भाई जी ने MSc में गोल्ड मेडल भी प्राप्त किया है। आप मधुबन में पिछले 45 वर्षों से रहकर अपनी ईश्वरीय सेवाएं दे रहे हैं। आप भारत के सभी राज्यों में जाकर योग भट्टी के क्लासेज कराते रहते हैं और यहाँ यूथ विंग के भी आप हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेटर भी हैं। साथ साथ आप पांचों खंडों में विश्व के पांचों खंडों में आप अलग अलग कंट्री में 91 कंट्री में जाकर ईश्वरीय सेवाएं देते रहे। इनके ताली भी बजाएंगे भाई जी के लिए। और अभी भी ऑनलाइन क्लासेज भी कराते रहते हैं। दो शब्द भाई जी के लिए कहना चाहूंगा कि हम समीप रहते हैं, यूथ विंग के हैं, तो भाई जी के साथ दिव्य गुणों के भंडार हैं। भ्राता जी, आप शक्तियों की खान है, आप ईश्वरीय परिवार की हम सबकी शान है, आप और हम सभी युवाओं के आदर्श हैं आप। तो अभी हम सुनेंगे आदरणीय आत्म भाई जी की तरफ।
ओम शांति। हमारा टॉपिक है मनसा में निराकारी, वाचा में निरंकारी और कर्मणा में निर्विकारी बनना। प्यारे ब्रह्मा बाबा ने इतनी बड़ी यज्ञ की जिम्मेदारी संभालते हुए ऐसी श्रेष्ठ स्थिति को प्राप्त किया तो हमें केवल बाबा को फॉलो करना है। अंतिम दिनों में बाबा जब अव्यक्त हुए तो बाबा ने इन तीन शब्दों का उच्चारण किया था। बच्चे, निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी बनो, क्योंकि ये सारे ज्ञान का सार है। और ये तीनों शब्द एक दो से बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं। जितना हम निराकारी स्थिति में स्थित होते हैं उतना हमारी स्थिति निर्विकारी बनती है, और जितना हम निर्विकारी बनते हैं उतना निरहंकारी बनते जाते हैं। तो सबसे पहली बात है मनसा में निराकारी बनना, क्योंकि आत्मा रूपी बीज से जो जीवन रूपी वृक्ष निकलता है उस पर दिव्य गुणों के फल फूल लगते हैं। और देह भान रूपी जो बीज होता है उससे जो जीवन रूपी पेड़ निकलता है उस पर विकारों के फल लगते हैं। तो हमें क्या करना है, आत्म अभिमानी स्थिति को विकसित करना है और देहाभिमान के बीज को योग की अग्नि में भस्म करना है। तो सबसे पहली बात है निराकारी स्थिति अनुभव करना। उसके लिए हमें हर रोज अमृत वेले एक प्रयोग करना है, बहुत प्रैक्टिकल प्रयोग करना है। बाबा को गुड मॉर्निंग करने के बाद ऐसा हमें अनुभव करना है कि अभी अभी सर्वशक्तिमान निराकार शिव पिता ब्रह्मा बाबा के फरिश्ता स्वरूप में प्रवेश करके मेरे समक्ष विराजमान है। मैं बहुत प्यारा बच्चा हूं, बहुत प्यारी बच्ची हूं, तो निराकारी बाप मुझे निराकारी तिलक लगा रहे हैं। और बच्चे आत्म अभिमानी भव ये वरदान भी मुझे दे रहे हैं। मैं बहुत प्यारा बच्चा हूं, तो उस निराकारी तिलक पर विजय का वी शेप का तिलक भी लगा रहे हैं और सारे दिन भर में विजयी बनकर रहो ये वरदान भी मुझे दे रहे हैं। तो सारे दिन भर में मैं आत्मा डबल तिलक धारी आत्मा हूं। ऐसी अनुभूति करने से मनसा में निराकारी स्थिति रहती है और जो भी सामने आता है उनको निराकारी स्वरूप में ही हम देखते हैं। मनसा में निराकारी अर्थात स्वयं को निराकारी आत्मा समझकर सर्व को निराकारी स्वरूप में देखना, ठीक है। तो इससे क्या होता है, हमारे मन में सबके प्रति शुभ भावनाएं पनपती रहती हैं और हमारी पवित्रता की स्थिति बहुत अच्छी होती है। लेकिन विधि पूर्वक निराकारी स्थिति की अनुभूति को बढ़ाते रहना बहुत जरूरी है। विधि पूर्वक निराकारी स्थिति की अनुभूति करना अर्थात स्वयं को बुद्धि रूपी नेत्र से चमकता हुआ सितारा देखना। जब तक हम देखते नहीं हैं तब तक उसकी अनुभूति हमें नहीं होती है। तो दिव्य चक्षु से हमें भ्रुकुटी के बीच में चमकता हुआ सितारा देखना है और उसमें हमें स्थित होना है और स्थित होकर आत्मा के जो निजी सात गुण हैं, सुख शांति प्रेम पवित्रता ज्ञान आनंद शक्ति, इन सात गुणों का एक के बाद एक बहुत सुंदर अनुभव करते जाना है। उससे क्या होगा, आत्मा का प्रकाश धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, आत्मा के चारों ओर एक सुंदर आभा मंडल दिव्य प्रकाश का औरा हमें भी अनुभव होता जाएगा और जो भी हमारे संबंध संपर्क में आएंगे उनको भी वो अनुभव होता जाएगा। तो इस अनुभूति को हमें बढ़ाते जाना है। कहते हैं इस देह रूपी वस्त्र को भूल जाते हैं तो हमें दिव्य शस्त्र अस्त्र शस्त्र प्राप्त होते हैं। तो हमें क्या करना है, मैं कौन हूं, मैं हूं देह से न्यारा केवल एक चमकता हुआ दिव्य सितारा। मेरा अस्तित्व क्या है, चमकता हुआ स्टार सितारा। बहन भाई के रूप में ये तो हमें वस्त्र मिला है, ये तो हमें इंस्ट्रूमेंट मिला है पार्ट बजाने के लिए। कहते हैं जो जितना गरीब होता है उतना वो परमात्मा से करीब होता है। अब गरीब किसको कहते हैं दुनिया में, जिसको रहने के लिए अपना घर भी नहीं होता है उनको गरीब कहते हैं। तो इस देह रूपी घर को भूल जाना अर्थात स्वयं को एकदम आत्मा गरीब अनुभव करना, बेघर माना बेघर, ये घर भी मेरा नहीं है, तो परमात्मा के अति करीब अनुभव करते जाते हैं। हमारे और बाबा के बीच में केवल एक छोटी सी दीवार है, देह भान की दीवार है। इस दीवार को हम हटा देते हैं, देह के भान को भूल जाते हैं, तो परमात्मा की याद हमें बहुत सहज अनुभव होती है। इसलिए कहते हैं जितना देह से न्यारा उतना बाबा का प्यारा। अभी हिसाब है जितना उतना, जितना देह से न्यारा उतना बाबा का प्यारा। इस देह की कंपनी में हमें कौड़ी बनाया माया ने, बॉडी के कंपनी ने कौड़ी बनाया, और इसको भूलने से हम हीरे तुल्य बनते जाते हैं। ठीक है ना, बॉडी समझने से पिछाड़ी में जाते हैं और सोल समझने से गोल की तरफ अर्थात अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते हैं। तो सारे दिन भर में हमें क्या करना है, मैं चमकता हुआ स्टार हूं। ठीक है, दूसरी बात, वाचा में निरहंकारी बनना। हमारे बोल हमारे व्यक्तित्व की पहचान दिलाते हैं। कोई नए व्यक्ति से फोन पर अगर हम बात करते हैं तो उसके व्यक्तित्व को हम देखना शुरू करते हैं, ये व्यक्ति कैसा है। तो बोल बिल्कुल निरहंकारी भाव से हमारे हो। निरहंकारी भाव से जब हम बोलते हैं तो बोल में बहुत मिठास होती है, अमृत में हमारी वाणी होती है। अहंकार जब आता है तो बोल कभी कड़वे मुख से निकल सकते हैं, लेकिन जब हम आत्म अभिमानी स्थिति में स्थित होकर बोलते हैं तो बोल में बल होता है और बोल में मिठास होती है। ऐसा लगता है वाणी में वीणा बज रही है, अमृत धारा हमारे मुख से निकल रही है। हर बोल हमारा समर्थ बोल होता है और बल प्रदान करने वाला होता है, प्रेरणा प्रदान करने वाला होता है। एक छोटा सा उदाहरण आपको मैं देना चाहता हूं कैसे हमारे बोल हमारे व्यक्तित्व की पहचान दिलाते हैं। एक बार क्या हुआ, राजा सुबेदार और सिपाही तीनों घोड़े पर बैठकर जंगल में शिकार करने के लिए निकले। राजा के घोड़े के पैर में घुंघरू बंधे हुए थे। उन्होंने अपने घोड़ों को पेड़ को बांधा और शिकार करने चले गए, और जैसे शिकार करके वापस आए तो राजा का घोड़ा वहां से छुटकर कहीं चला गया था। अब राजा बेचैन हो गया। अब राजा ने सिपाही को कहा, जाओ जंगल में ये घोड़ा मेरा जल्दी ढूंढकर लेके आओ। तो सिपाही घोड़े को ढूंढने जंगल में निकलता है तो रास्ते में एक अंधा व्यक्ति बैठा होता है। तो सिपाही कहता है, हे अंधे बाबा, यहां से कोई घोड़ा गुजरा क्या, घुंघरू की कोई आवाज आई क्या। उसने कहा, नहीं भाई। अभी सिपाही को वापस आने में देरी हुई तो राजा ने सुबेदार को भेजा, जाओ घोड़ा ढूंढ के आओ। सुबेदार उसी रास्ते से गुजर रहा था तो अंधा व्यक्ति बैठा था, उसने कहा बाबा जी यहां से कोई घोड़ा तो नहीं गुजरा, कोई घुंघरू की आवाज तो नहीं आई। उसने कहा नहीं भाई। अब सुबेदार को वापस आने में देरी हो गई तो राजा खुद घोड़े को ढूंढने के लिए निकला उसी रास्ते से जहां वो अंधा व्यक्ति बैठा था। तो राजा के मुख से निकला महात्मा जी यहां से कोई घोड़ा तो नहीं गुजरा, कोई घुंघरू की आवाज तो नहीं आई। तो उसने कहा नहीं राजन। तो राजा चौंक गया, उसने कहा आपको दिखाई नहीं देता है और आपने कैसे पहचाना कि मैं राजा हूं। उसने कहा राजन आपके बोल बता रहे हैं कि आप राजा हो। इतना सम्मान मुझ अंधे व्यक्ति को दिया, जो जिसका दिल बहुत बड़ा होता है, जिसके दिल में सम्मान की ऊंची भावना होती है, उसके मुख से ऐसे सम्मानजनक बोल निकलते हैं। तो हमारे बोल ही हमारे व्यक्तित्व की पहचान दिलाते हैं, इसलिए हमें अपने बोल पर बहुत ध्यान देना है। हम बहुत महान आत्माएं हैं, हमारे मुख से महान बोल, प्रेरणा प्रदान करने वाले बोल, खुशी दिलाने वाले बोल, प्रोत्साहन दिलाने वाले बोल, उमंग उत्साह बढ़ाने वाले बोल ही मुख से निकले। जैसे बाप दादा का एक बोल भी व्यर्थ नहीं होता है, ऐसे बोल हमारे समर्थ बोल हो। लेकिन कोई हम साधारण व्यक्ति को देखते हैं और हमारे मन में भावना थोड़ी कम होती है तो हमारे मुख से निकलता है तुम कहां गए थे हो, शब्द तुम ही दो ही है। लेकिन मन में बहुत ऊंची भावना है तो हमारे मुख से निकलता है भाई जी आप कहां गए थे हो, आप तुम भी दो शब्द है और आप भी दो शब्द है, लेकिन दोनों में बहुत अंतर है। जब दिल में ऊंची भावना होती है तो मुख से क्या निकलता है, आप कहां गए थे भाई जी, रिस्पेक्ट है, इसमें सम्मान है। तो हमारे मुख से हमेशा मीठे बोल तब निकलते हैं जब हम वाचा में निरहंकारी होते हैं, अहंकार का भाव थोड़ा भी उसमें समाया रहता है तो ऐसे कटु वचन, कठोर वचन, दुख देने वाले वचन निकलने की संभावना हो सकती है। इसलिए बोल में बहुत मिठास हो। एक स्लोगन हमेशा याद रखना, लिखो, जो देगा मान वही बनेगा महान। जो सबको मान देता है वही मान बनता है, वही महान बनता है। मान देने वाले माननीय बनते हैं। भाई हमें मान देने में जेब से कुछ निकाल के देना नहीं पड़ता है, केवल दिल बड़ा रखना होता है। तो दरिया दिल से बड़े दिल से हमें सबको सम्मान देना है। प्रकाश मणि दादी जी का एक ही स्लोगन था, दादी जी विश्व की लीडर बन गई, शेषी जी का छोटों को प्यार, समान वाले और बड़ों को सत्कार, इस मंत्र से दादी ने सबका दिल जीता, सबके दिलों में स्थान अपना बनाकर गई। तो दादी जी को, ब्रह्मा बाबा को हमें फॉलो करना है। ठीक है ना, तो बोल में हमारी बहुत मिठास हो, नम्रता के बोल हो, निर्माणता का भाव उसमें हो, प्यार की अनुभूति सुनने वालों को उसमें हो, ठीक है। तीसरा शब्द है कर्मणा में निर्विकारी बनना। मोटे रूप से हमने विकारों को जीत लिया है, कोई बड़ी बात नहीं है। परमात्म पालना में हम पल रहे हैं, मोटे रूप से विकारों को हमने जीत लिया है, लेकिन जो विकारों के अंश हैं, उनके जो बाल बच्चे हैं, उनको हमें जीतना है। निर्विकारी बनने के लिए विकारों के अंश मात्र भी आत्मा में न हो, क्योंकि हम कहां जा रहे हैं, कहां जा रहे हैं, विष्णु के वंश में। विष्णु किसको कहते हैं, विष्णु, जिस आत्मा में अंश मात्र भी विकार का विष नहीं होता है, वही विष्णु के समीप अर्थात मम्मा बाबा के समीप सतयुग में रहते हैं। इसलिए अंश मात्र भी जो विकार के हैं आत्मा में, उनको हमें मिटाते जाना है। काम विकार का सूक्ष्म अंश है, किसी आत्मा के प्रति लगाव झुकाव होना, किसी की विशेषता रूप रंग ऐसा देखने से थोड़ा सा लगाव झुकाव में आना, ये भी आज की मुरली में बाबा ने कहा विकार का सूक्ष्म अंश है। क्योंकि हमारे कई आत्माओं के साथ पॉजिटिव और नेगेटिव अकाउंट कई जन्मों के हैं, हमें संगम में उन अंशों को ज्ञान और योग की पालना से जड़ से खत्म करना है, जिसको दूसरे शब्दों में फैमिलियरिटी कहते हैं। फैमिलियरिटी का कीड़ा हमें बहुत पीड़ा देता है। अपवित्र संकल्प किसी के प्रति चले उसको हम जीत लेते हैं, लेकिन फिर भी संपूर्ण पवित्रता अर्थात मेरा तो एक बाबा दूसरा न कोई, तो हमें चेक करना है और चेंज करना है, उस बात पर हमें विजय प्राप्त करना है। सबको आत्मिक भाव से देखना है। बहुत सुंदर एक प्रिंसिपल है मैग्नेटिज्म में, सजातीय ध्रुव जो है दूर हटते हैं, विजातीय ध्रुव जो है आकर्षित होते हैं। जब हम स्वयं को देह समझते हैं तो आकर्षण होने की संभावना हो सकती है, लेकिन आत्मा आत्मा भाई भाई देखते हैं तो रिपल्शन होता है, न्यारे होते हैं और एक बाबा की याद हमें रहती है। इसलिए भाई भाई की दृष्टि हमारी पक्की होती जाए। क्रोध मोटे रूप से तो हमने जीत लिया, लेकिन कभी कभी रोब हमें आता है, कभी कभी थोड़ा फीलिंग में हम आ जाते हैं, तो रोब भी न हो। उसको जीतने के लिए हमें क्या अनुभव करना है, मैं शीतला देवी हूं, या मैं शीतल अंग वाला योगी आत्मा हूं, तो कभी हमारे मुख से रोब निकल ही नहीं सकता है, क्रोध कभी आ ही नहीं सकता है। हमें ये ध्यान देना है, जितना जो बड़ा व्यक्ति होता है उतना वो निर्माण होता है, ये उसकी पहचान है। मैं अगर स्वयं को बड़ा समझता हूं तो उसकी निशानी क्या है? निर्माणता। अगर निर्माणता नहीं तो वो बड़ा नहीं है। छोटा सा उदाहरण लीजिए, बाबा से बढ़कर तो इस दुनिया में कोई ऊंचा नहीं है, सबसे ऊंचा बाबा है ना। तो बाबा को मुरली के अंत में देखो, आंखों की तरफ बाबा के देखो, याद प्यार नमस्ते। लिटरली बाबा की आंखें झुकती है। क्यों, क्या जरूरत है? मुख से बाबा कहते हैं, बच्चे नहीं सुनते हैं तो बाबा प्रैक्टिकल दिखाते हैं। देखो मेरे तरफ, मैं कितना ऊंचा हूं और कितना निर्माण हूं, सीखो मेरे से। तो जितना जो बड़ा व्यक्ति होता है उतना वो निर्माण होता है, नम्रचित्त होता है, प्योर गोल्ड ही मोल्ड होता है। उसमें छोटी सी भाई अलाय होती है तो वो मोल्ड नहीं होता है। इसलिए व्यवहार में रहते हुए कभी भी रोब, सूक्ष्म अहंकार की फीलिंग किसी को हमारे व्यक्तित्व से न आवे। कहते हैं अहंकारी व्यक्ति से लोग दूर हटते हैं, भागते हैं। ये अहंकारी है, इससे दूर हटो। और जो निर्माण होता है उससे समीप जाते हैं लोग, ये बहुत निर्माण है। तो निर्माण जो व्यक्ति होता है उसको सेवा करने का चांस मिलता है, और अहंकारी व्यक्ति को सेवा करने का चांस मिस होता है। इसलिए क्रोध को हमें जीतना है, लोभ। हमें एक स्लोगन हमेशा याद रखना है, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, जो भगवान ने मुझे दिया है वो पर्याप्त है, जो मुझे प्राप्त है मेरे भाग्य के अनुसार, मेरे श्रेष्ठ कर्मों के अनुसार, वो पर्याप्त है, भरपूर है मेरे लिए। ये बात अगर आपके दिल में होगी तो लोभ की भावना आपके मन में नहीं आएगी, ये गारंटी है। हबच नहीं आएगी, भगवान ने मुझे बहुत कुछ दिया, संतुष्टता, ये बहुत बड़ी अमीरी है। सबसे अमीर व्यक्ति दुनिया में कौन है? जो सदा संतुष्ट रहता है। इसलिए लोभ के सूक्ष्म अंश को भी हमें जीतना है, ठीक है। और मोह, सारे गीता का सार दो ही शब्द में है, नष्ट मोहा स्मृति लब्धा। पांचों विकारों में से मोह को ही पकड़ते हैं। क्यों भाई? क्योंकि पांचों विकारों में से सबसे कठिन विकार है मोह को जीतना। मोह की सूक्ष्म रग कहां जुड़ी हुई होती है हमें पता नहीं चलता है। हम किसकी दुनिया में जा रहे हैं भाई? हाँ जी बोलिए। मोह ना, किसकी दुनिया में जा रहे हैं? किसकी दुनिया में जा रहे हैं? मोहन, कृष्ण की दुनिया में। तो मोह ना होगा तो मोहन के साथ राज करेंगे, नहीं तो कैसे करेंगे भाई? तो सबके साथ समान प्यार होना, इसको कहते हैं नष्ट मोह। किसी से विशेष एक्स्ट्रा प्यार होना, उसको थोड़ा सा मोह कहेंगे। इसलिए प्यार के सागर के हम बच्चे हैं, सबके साथ प्यार से रहना ये हमारा व्यवहार हो, ये दिव्य गुण है। लेकिन निर्मोही अर्थात न्यारा और प्यारा, न्यारा भी रहना है और प्यारा भी रहना है, बैलेंस रखना है। ब्रह्मा बाबा के लौकिक रिलेटिव्स यज्ञ में रहते थे, लेकिन बाबा बिल्कुल न्यारे न्यारे और प्यारे, ठीक है ना। तो इसलिए हमें चेक करना है कृष्ण को कैसे दिखाते हैं, विश्व के ग्लोब पर बैठे हैं और बांसुरी बजा रहे हैं। क्यों विश्व के ग्लोब पर दिखाते हैं? क्योंकि विश्व में जो व्यक्ति वैभव है उससे रिंचक मात्र भी मोह उनका नहीं है, एकदम न्यारे प्यारे बनकर बैठे हैं। तो अगर हमें कृष्ण के साथ बैठना है, कृष्ण की दुनिया में समीप जाना है, तो हमें भी मोह के रग को जीतना होगा, ठीक है। और पांचवा अहंकार, मैंने प्रकाशमणि दादी जी का 95 में इंटरव्यू लिया था इन तीन शब्दों पर, ये टॉपिक था मेरा। मैंने दादी जी को प्रश्न पूछा कि दादी जी, बाबा ने ये तीन शब्दों का उच्चारण लास्ट में किया, निराकारी निर्विकारी निरंकारी, अब निराकारी के बाद निर्विकारी बनते हैं, उसमें अहंकार पांचवा आता है, फिर भी तीसरे शब्द का बाबा ने उच्चारण क्यों किया? पांचवा अहंकार उसमें आते हुए भी निराहंकारी बाबा ने क्यों कहा, इसके पीछे कारण क्या? सुना चेतना बहन, ये प्रश्न दादी को पूछा। तो दादी जी ने बड़ा सुंदर जवाब दिया भाई जी, कि देखो जितना निराकारी बनते हैं उतना हम निर्विकारी बनते हैं, अहंकार को भी हम जीत लेते हैं, लेकिन बाबा के पास आने के बाद जो हमें उपलब्धियां होती है, बहुत अच्छा ज्ञानी बनते हैं, बहुत अच्छा योगी बनते हैं, बहुत अच्छी बुद्धि की प्लानिंग होती है, बहुत अच्छा प्रशासक बनते हैं, अपने डिपार्टमेंट को संभालते हैं, कारोबार को संभालते हैं, तो बाबा के पास आने के बाद जो उपलब्धियां होती है, प्राप्तियां होती है, उनका भी अहंकार ना हो, इसको कहते हैं निरहंकारी बनना। बाबा के पास हम आए थे तो झोली खाली थी, जो भी झोली में खजाने प्राप्त है उसकी अमानत है, और बाबा की अमानत और हम अपनी अमानत समझ रहे हैं उसको, तो इससे भी न्यारा हो, जो भी प्राप्तियां है उसकी देन है, तो उस अहंकार को भी जीतना, उसको कहते हैं निरअहंकारी बनना। तो हमें क्या करना है, सारे दिन भर में निरअहंकारी रहना है, लेकिन कई बार हम दो बातों को मिक्स करते हैं, शुद्ध नशा और अशुद्ध अहंकार। मुझे शुद्ध नशा है या अशुद्ध अहंकार है, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। देखो इस सभा में राजे महाराजे रानी महारानियां बैठी है होनहार, तो शुद्ध नशा हमारे चेहरे पर होना जरूरी है, लेकिन मुझे शुद्ध नशा है या अशुद्ध अहंकार है कैसे पता चले? हाँ भाई, डॉक्टर तो एक सेकंड में पहचानता है बुखार है या नहीं है, है ना हिना बहन? तो अशुद्ध अहंकार या शुद्ध नशा क्या है, कैसे परखे? एक सेकंड उसकी परख है, जितना शुद्ध नशा होता है उतना हम निर्माण रहते हैं। अशुद्ध अहंकार है तो अक्कड़ हमारे व्यवहार में होती है, बहुत अच्छा ज्ञानी हूं, बहुत अच्छा योगी हूं, यह अहंकार सही चीज नहीं है। लेकिन शुद्ध नशा, ईश्वरीय नशा हमारे चेहरे पर सदा छाया रहे, उस पर हमें ध्यान देना है, स्वमान में हमें रहना है। एक शब्द हमेशा याद रखना, स्वमान हमें बाप समान बनाता है। देखो कितना गहरा राज है इसमें, एक शब्द, स्वमान हमें बाप समान बनाता है। क्यों भाई, इतना गहरा राज उसमें क्यों समाया हुआ है? क्योंकि स्वमान में रहने से ईश्वरीय नशे की अनुभूति हमें होती है, और जितनी ईश्वरीय नशे में हम स्थित रहते हैं, इस पुरानी दुनिया से हम न्यारे रहते हैं, माया के प्रभाव से न्यारे रहते हैं, और बाबा की याद में टिके रहते हैं, बाबा के प्यार में खोए रहते हैं। जितना ईश्वरीय नशे में चूर, उतना इस दुनिया से दूर, ऑटोमेटिक रहते। तो सारे दिन भर में समान में रहना जरूरी है। समान में रहना सीखा तो आपकी स्थिति का स्तर धीरे 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 ऊंचा उठता जाएगा, एक गारंटी है। ब्रह्मा बाबा को शुरू दिन से नारायणी नशा रहता था, मैं नंबर वन नारायण बनने जा रहा हूं, एकदम नारायणी नशा बाबा के चेहरे पर छाया रहता था। उस नशे ने बाबा को संपूर्णता के निशाने पर तेजी से पहुंचाया और शिव बाप समान बनाया। यह हर काम नशा करता है, ईश्वरीय नशा। इसलिए कहते हैं ईश्वरीय नशा आत्मा की जान है और आत्मा की शान है। देखो ये कितना महत्व है। मेरे शरीर में आत्मा नहीं होगी तो आप कहेंगे ये मुर्दा बैठा है यहां, क्योंकि इसमें जान ही नहीं। तो ऐसे आत्मा में अगर ईश्वरीय नशा नहीं है तो वो बेजान है, और वही हमारी शान है। इसलिए हमेशा समान के सिंहासन पर हमें बैठे रहना है, तो ईश्वरीय नशे की अनुभूति हमें होती जाएगी और बाबा की याद बहुत सहज अनुभव होती जाएगी। समान का हाथ हमें भगवान का साथ दिलाता है, समान का हाथ हमें वहां बिठा देता है, ऑटोमेटिक बिठाता है। आप चेक करो, जिस दिन आपको बहुत अलौकिक मस्ती रहती है, यहां आप आए बट्टी के लिए, अनुभव करो बहुत आपको अलौकिक मस्ती चढ़ी है, आप बाबा के पास अनुभव करेंगे, बुद्धि के द्वारा इस दुनिया से पार अनुभव करेंगे, बहुत अच्छी श्रेष्ठ स्थिति की अनुभूति आप करते रहेंगे। इसलिए श्रेष्ठ स्थिति का गुह्य राज क्या है? श्रेष्ठ स्थिति हम बनाना चाहते हैं, हम बाबा के पास आए हैं, किस लिए आए हैं? श्रेष्ठ स्थिति बनाने के लिए आए हैं। एक स्लोगन जिंदगी भर नहीं भूलना है, जैसी स्थिति वैसी स्तुति होती है, जैसी स्थिति होती वैसी उपस्थिति होती है, जैसी अवस्था वैसी व्यवस्था होती है। हम बाबा के पास आए हैं बहुत सुंदर योग की स्थिति बनाने के लिए, लेकिन ऐसी श्रेष्ठ स्थिति बनाने का सीक्रेट क्या है, गुह्य राज क्या है? उसका गुह्य राज यही है, आत्मिक स्थिति में स्थित होकर समान के सिंहासन पर बैठे रहना, बस ये उसका गुह्य राज है। ये दोनों बातों में से एक बात भी मिस है, आत्मा की स्मृति या सोमान की सीट पर सेट नहीं है, आपकी स्थिति नीचे आएगी, आपकी स्थिति ऊपर नहीं उठेगी। इसलिए हमें क्या करना है, स्व माना मैं आत्मा, मान माना मैं महान आत्मा, ये दोनों बातें साथ साथ हो, फिर आप देखेंगे सारे दिन भर में बहुत अच्छी योग की स्थिति आपकी होगी और आपकी श्रेष्ठ स्थिति को देखकर दूसरों को भी ऐसे श्रेष्ठ बनाने की स्थिति के लिए प्रेरणा मिलती जाएगी। खुद हम अकेले पुरुषार्थ कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन हमारे पुरुषार्थ के द्वारा अनेकों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा मिले, उससे बढ़कर है। प्रेरणा के स्रोत हमें बनना है। हमारे पुरुषार्थ के द्वारा अनेक आत्माओं को आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती रहे, ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है ना? क्यों? क्योंकि जितनों को प्रेरणा मिलती है आगे बढ़ाने के लिए, उनके दिल की दुआएं हमें मिलती हैं, वही हमारा इनकम है, वही हमारी कमाई है। तो इसलिए हमें सारे दिन भर में मनसा निराकारी रहना है, वाचा के द्वारा निरहंकारी रहना है और कर्मणा के द्वारा व्यवहार में आते हुए निर्विकारी बनना है। तो ऐसी स्थिति की अनुभूति हम चंद घड़ियों के लिए अभी करने जा रहे हैं। तो सभी थोड़ा अलर्ट होके बैठेंगे, एकदम चुस्त और मस्त होके बैठेंगे, ऐसा समझेंगे अमृत वेले 4 बजे के योगाभ्यास के लिए आप बैठे हैं। कमेंट्री के द्वारा बहुत गहन अनुभूति योग की हम करने जा रहे हैं। ओम शांति। इस देह रूपी चैतन्य दीपक में मैं आत्मा रूपी चैतन्य ज्योति जगमग रही हूँ। मुझ आत्मा रूपी चैतन्य ज्योति से दिव्यता का प्रकाश चारों ओर फैल रहा है। मुझ आत्मा रूपी चैतन्य ज्योति के चहुओं बहुत सुंदर दिव्य प्रकाश का आभा मंडल अनुभव हो रहा है। मेरा असली स्वरूप निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप है। मैं भगवान की नजरों में आई हुई भाग्यवान आत्म ज्योति हूँ। भाग्य विधाता भगवान मेरे भाग्य के गीत हर रोज मुरली में गाते ही रहते हैं। मैं आत्मा रूपी चैतन्य ज्योति देह रूपी चैतन्य दीपक से न्यारी होकर बुद्धि बल से निराकारी दुनिया की ओर उड़ती हुई जा रही हूं। इस विश्व के ग्लोब से पार चंद्र सूर्य तारा गण से भी पार उड़ती हुई जा रही हूं। ओह फरिश्तों की दुनिया में पहुंच गई हूं, जहां चारों ओर सफेद ही सफेद दिव्य प्रकाश ही प्रकाश है। मुझ आत्म ज्योति ने बहुत सुंदर चमकीली ड्रेस दिव्य प्रकाश पुंज की ड्रेस धारण कर ली है। कितनी सुंदर हल्की फुल्की ड्रेस है यह। ओहो फरिश्तों के शहंशाह प्यारे ब्रह्मा बाबा मेरे समक्ष विराजमान है। मेरे अति प्यारे हैं, अति मीठे शिव बाबुल भी उनके भ्रुकुटी में चमकते हुए दिखाई दे रहे हैं। बाप दादा मुझे अति स्नेह भरी दृष्टि दे रहे हैं। मैं फरिश्ता स्नेह सागर की लहरों में बाबा की बाहों के झूले में झूल रहा हूं। झूलता ही जा रहा हूं बाबा की बाहों में समा गया हूं। बाबा के नैनों में स्नेह के मोती चमक रहे हैं। शिकिल दे बच्चे मैं बेहद खुश हूं। मैंने अपना खोया हुआ लाल पुनः प्राप्त किया है, इसलिए मैं बेहद खुश हूं। फरिश्ता स्वरूप की ड्रेस को छोड़कर मैं आत्मा रूपी चैतन्य ज्योति बुद्धि बल से उड़ती हुई निराकारी दुनिया की ओर जा रही हूं, जा रही हूं। ओह, निराकारी दुनिया में पहुंच गई हूं। कितनी सुंदर, न्यारी प्यारी निराकारी दुनिया है यह। चारों ओर सुनहरी लाल ही लाल दिव्य प्रकाश प्रकाश है, शांति ही शांति, परम शांति है। मेरे प्राणों के प्राण, मेरे प्राण पिता सत्यम शिवम सुंदरम, प्यारे शिव बाबुल मुझ आत्म ज्योति के समक्ष विराजमान है। मैं आत्म ज्योति, ज्योति सागर, शिव पिता को दिव्य चक्षु से देख रही हूं, देखती ही जा रही हूं। बाबा मेरे नैनों के नूर बन चुके हैं, मेरे दिल की दुनिया में मेरे दिलाराम बाबा ही बाबा है। बाबा ज्ञान सूर्य है, आध्यात्मिक शक्तियों के प्रचंड स्रोत है, शक्तियों के सागर ज्ञान सूर्य शिव पिता से अत्यंत शक्तिशाली किरणों की वर्षा निरंतर मुझ आत्म ज्योति पर हो रही है। मैं आत्म ज्योति ज्ञान सूर्य शिव पिता से अनंत शक्तियां असीम शक्तियां ग्रहण कर रही हूं। योग की प्रखर अग्नि में मेरे पूर्व जन्मों के पाप पल भर में भस्म हो रहे हैं। मैं आत्म ज्योति निर्विकारी बनती जा रही हूं। शक्तियों से भरपूर आत्म ज्योति निराकारी दुनिया से वापी बुद्धि बल से वाया सूक्ष्म वतन इस साकारी दुनिया की ओर आ रही हूं। और इस शरीर रूपी चैतन्य दीपक में विराजमान हो चुके हूं। मुझ शक्तिशाली आत्म ज्योति से शक्तियों की सजीव तरंगे इस वायुमंडल में चारों ओर फैल रहे हैं, वायुमंडल को प्रकंपित करके शक्तिशाली बना रहे हैं। जैसे मेरे शिव पिता निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप हैं, वैसे मैं आत्मा उनकी संतान भी निराकार ज्योति बिंदु हूँ। ओम शांति शांति शांति।
दिन बीत जाए, दिन बीत जाए, गुजर जाए रातें, बाबा तेरी यादों में। दिन बीत जाए, गुजर जाए रातें, बाबा तेरी यादों में। हर पल तेरे गीत में गाऊं, होठों पे तेरा नाम रहे, बाबा तेरी यादों में, बाबा तेरी यादों में।
संसार है, दिन बीत जाए,
गुजर जाए रातें बाबा तेरे यादों में, हर पल तेरे गीत में गाऊं, हो तो तेरा नाम रहे बाबा तेरी यादों में।
शांति, बहुत बहुत थैंक्स भाई साहब आपको, आप स्पेशल हमारे लिए टाइम निकाल करके आए हैं और ज्ञान की डेप्थ में भी आप ले गए और बहुत सरल शब्दों में हमें निर्विकारीपना क्या है, निरहंकारीपना क्या है और साथ में नशा क्या होता है ये आपने बहुत सरल शब्दों में स्पष्ट किया है। तो बहुत बहुत थैंक्स, एक हाथ की ताली से हम आपको थैंक्स करते हैं। थैंक यू वेरी मच।